SBS اردو پر خوش آمدید.
کیمو یہی کہوں گی کہ ہاں سب سے زیادہ ٹف پارٹ تھا. 14th ڈے یہ تھا کہ میرے بال میرے ہاتھوں میں آ گئے تھے. پہلی کیمو کے بعد میرے بچوں نے لٹرلی کافی ہیلپ کی میری. ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی ایموشنل سین ہوتا ہے کہ آپ کے بال آپ کے ایسے ہاتھوں میں آ رہے ہیں. تو دونوں میرے بچوں نے پھر میرا ہیڈ شیف کیا کہ چلیں اماں بس اب بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ, چلیں آئیں ہم آپ کا ہیڈ شیف کر دیتے ہیں. تو دونوں نے میرا ہیڈ شیف کیا اور دیور ود می مسلسل میرے ساتھ ہی تھے. اور ظاہر ہے اس کے جو بھی سائڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, آپ کے منہ کا ذائقہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, ماؤتھ السرز آپ کے ہو جاتے ہیں, آپ کے سارے ناخون آپ کے جھڑ جاتے ہیں, سارے بال, اور اوور آل آپ کی طبیعت کافی خراب ہوتی ہے, کافی زیادہ خراب ہوتی ہے. لیکن آپ کو یہ دوا دیتے ہیں, اس کے لیے دوا لیں, آپ سائڈ ایفیکٹس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں, ہینڈل کریں اسے, اور گزر جاتا ہے الحمدللہ, سب وقت گزر جاتا ہے, بس ہمت کی بہت ضرورت ہوتی ہے.
یہ آواز تھی عاکفہ طفیل کی جو کہ بریسٹ کینسر سروائیور ہیں. ان کے دو بچے ہیں جو اس وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور پچھلے 7 سال سے یہ میلبرن کی رہائشی ہیں. عاکفہ ایک ہاؤس وائف ہیں اور بزنس میں اپنے خاوند کی مدد کرتی ہیں. السلام علیکم سامعین, میرا نام وقار علی ہے اور آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ عاکفہ طفیل موجود ہیں. ان سے میری ملاقات پچھلے ہفتے میلبرن میں آرگنائز کی پنک واک میں ہوئی تھی. وہاں پر انہوں نے اپنی کہانی سنائی اور پاکستانی کمیونٹی کو بتایا کہ یہ مرض کس طرح جان لیوا بن سکتا ہے. آج ہم عاکفہ سے ان کی کہانی سنیں گے کہ انہیں کب کینسر ہوا, کیسے پتہ چلا اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. عاکفہ بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا.
مجھے بتائیں آپ کو چھاتی کے کینسر کی تشخیص کب ہوئی؟
2017 میں, وچ از 2 سال پہلے, ایسے ہوا کہ مجھے ایک چھوٹا سا لمپ محسوس ہوا بریسٹ میں. اور ظاہر ہے پہلا آپ کا ریئیکشن یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں اور آپ برا نہیں سوچنا چاہتے. تو میں نے بھی یہی سوچا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور اس کو الحمدللہ اگنور کر نہیں پائی زیادہ عرصے, کیونکہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ بہرحال دل کی تسلی کے لیے جی پی کو جا کے دکھا لو, کچھ نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, آگے چلیں گے. تو ان کے کہنے پہ پھر میں ویسے ہی ایک دن بس جی پی سے اپوائنٹمنٹ لی, میں چلی گئی. اس نے دیکھا, چیک کیا اور اس نے مجھے کہا کہ نہیں, اس کا ہم الٹرا ساؤنڈ اور میموگرام کرائیں گے. اور اگین دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا اور میں چلی گئی. جا کے میں نے اگلے دن کی اتفاق ہے, مجھے اپوائنٹمنٹ مل گئی, میں نے الٹرا ساؤنڈ اور میموگرام کروا لیا, اس کی رپورٹ ملی, اور پھر میری جی پی نے مجھے کال کیا کہ تم آؤ میرے پاس اور میں تم سے ملنا چاہتی ہوں. میں جی پی کے پاس گئی اور پھر وہاں پہ اس نے مجھے بتایا کہ آئی ڈونٹ ہیو اے گڈ نیوز فار یو, یہ چیز میلیگننٹ لگ رہی ہے اور ہمیں اس کو فردر دیکھنا پڑے گا, اور میں تمہاری اسپیشلسٹ سے اپوائنٹمنٹ کرواتی ہوں. اور اتفاق ہے کہ اگلے دن کی ہی اپوائنٹمنٹ مل گئی, جس پہ وہ جی پی خود بھی کافی حیران تھی کہ اتنے جلدی اسپیشلسٹ سے عموماً ملتی نہیں ہے اپوائنٹمنٹ. بہرحال اگلے ہی دن اپوائنٹمنٹ مل گئی, میں گئی ہوں, اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ہمیں اس کی بایوپسی کرانی پڑے گی. بس جی, اور اتفاق ہے, بس اتفاق نہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بہت بہت شکر ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہر راستہ آسان کیا ہے. میں بایوپسی کے لیے گئی ہوں تو مجھے اس عورت نے کہا کہ تم آدھا گھنٹہ ویٹ کر سکتی ہو, ہمارے پاس ایک کینسلیشن ہے, ہم تمہاری بایوپسی ابھی کر دیتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بیٹھ گئی, اور بس آدھے ہی گھنٹے کے بعد میری بایوپسی بھی ہو گئی. اس کی جب رپورٹ آئی ایک ہفتے کے بعد, تو ظاہر ہے جو بھی ہمارے فیئرس تھے وہ سارے کنفرم ہو گئے, پتہ چلا کہ جی کینسر ہی ہے. لیکن الحمدللہ ایک بگننگ سٹیج پہ پتہ چل گیا, حالانکہ کافی اگریسو گریڈ 3 کا کینسر تھا جو کہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. تو انہوں نے, ڈاکٹر نے پھر مطلب کہا کہ ہمیں سرجری ہوگی اور اس کو ہم نکالیں گے ٹیومر کو, اور ہم تھوڑی سی بایوپسی کریں گے لمف نوٹس کی بھی, تاکہ پتہ چل جائے کہ لمف نوٹس تک یہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا, آگے کا ٹریٹمنٹ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ود ان 2 ویکس سرجری ہوئی. پھر اس کے بعد جب اس کی رپورٹس آئیں تو پتہ چلا کہ سرجری تو ٹھیک ہو گئی تھی, کلیئر مارجنس کے ساتھ ٹیومر نکال لیا تھا انہوں نے, لیکن یہ کہ لمف نوڈز میں ان کو ٹریسز ملے تھے.
اچھا عاکفہ, اس سے پہلے آپ آگے جائیں, میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گا, کیونکہ
बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड करके आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपको जब 2017 में पता लगा कि लंब है और आपने जाके चेकअप कराया, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको चेकअप कराने पे किसने ज़्यादा इसरार किया? आपको ख़ुद क्या ख्याल आया कि आप जाके चेकअप कराएं, हस्बैंड का इसरार था, किस वजह से आप गईं? क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं समझते हैं कि छोटी सी चीज़ होगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, या उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं और चेकअप नहीं कराते, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं।
देखो, एक तो मुझे ये लगता है कि आपको जो है ना कॉन्शियस रहना चाहिए, चाहे वो अपना मामला हो, चाहे अब अगर आप मैरिड हैं तो आपके चाहे शोहर का हो, आपके बच्चों का हो, हर एक के मामले में आपको कॉन्शियस रहना चाहिए। क्योंकि देखो, ज़िंदगी में ये सब चीज़ें जो है ना, ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। बीमारी भी, सेहत भी, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। बच्चे जो हैं उनके साथ भी, मतलब आपको एक थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है और देखना पड़ता है कि अगर कोई भी चीज़ आपको नॉर्मल से हट के अगर महसूस हो रही है तो कोई मुजायका नहीं है कि आप उसको चेक कर लें। कम से कम अपने जहन के सुकून के लिए उसको चेक कर लें। आप कुछ नहीं है इंशाल्लाह तो ज़िंदगी आगे चलेगी और जो काम होंगे आपके वो होते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। मेरे केस में भी ये है कि मैंने 2017 की मार्च में तो मुझे लंप फील हुआ, लेकिन 2016 की अप्रैल में मैंने खुद ही एक मैमोग्राम जाके अपना करवा लिया था। सिर्फ क्यों? क्योंकि मैं कॉन्शियस थी इस बारे में कि जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, औरतों को चाहे वो मैमोग्राम हो, चाहे वो पेप्समेयर हो, जो भी, ये चीज़ें बहुत बहुत ख्याल करना चाहिए और इन चीज़ों को वक्त पे इनके टेस्ट करवाने चाहिए। अपने आप को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो, जान है तो जहान है।
बेशक, आपने बड़ी प्यारी बात की, जान है तो जहाँ है। तो अब मुझे ये बताएं कि आप जाती हैं, आप चेकअप करवाती हैं और पता लगता है कि लिम्फ नोड है, उस वक्त आपके क्या तासुरात हैं, आपकी क्या फीलिंग है, क्या इमोशनल हालत क्या है, मुझे थोड़ा वो बयान करें।
इमोशनल हालत तो बहुत ही अजीब थी। उस वक्त कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। एक जिसे कहते हैं ना नमनेस की फीलिंग जो होती है, कि लग रहा था जैसे सुनूं, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं फील हो रहा था उस वक्त। एक अजीब, बहुत ही अजीब ज़ॉम्बी की सी कैफियत थी। हर चीज़ आपके सर के ऊपर से गुजर रही थी और कुछ भी रजिस्टर नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं रजिस्टर हो रहा था कि ये आखिर क्या कह रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे नहीं, किसी और से बात कर रहे हैं। मतलब ये एक ना यकीन आने वाली कैफियत। और मेरे हस्बैंड की बहुत उस वक्त सपोर्ट थी, क्योंकि वो मुसलसल मेरे साथ थे, तो वो ही लिटरली हर बात को वही सुन के समझ रहे थे और फिर मुझे दोबारा से जिस तरह से वो उसको बताना, समझाना, क्योंकि मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़हनी कैफियत बहुत अजीब थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि अल्लाह मियाँ ने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को जैसे एब्जॉर्ब करा दिया, और फिर सिर्फ़ और सिर्फ वाकई अल्लाह ताला की मदद ही थी। मैं ये कहूँगी कि जो भी आपका फेथ है, आपका यकीन, आपका फेथ आपकी बहुत हेल्प करता है और आप फिर बस आगे चलते बढ़ते चले जाते हैं।
आपने मुझे बताया कि काफ़ी एग्रेसिव कैंसर था
जी, ग्रेड थ्री का
बट अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो गया था। और अर्ली स्टेज पे डायग्नोज होना, जो मुझे पिछले हफ्ते भी पता लगा पिंक वॉक पे, कि वो बहुत ज़रूरी है अर्ली प्रिवेंशन के लिए, कि अगर हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर लेते हैं कैंसर को तो हम बहुत सारी तकलीफ से, बहुत सारी मुश्किलात से पेशेंट को बचा सकते हैं।
आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ना रिकवरी के, अगर आपने महसूस कर लिया और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, डिनाइल में हैं, शर्मा रहे हैं, छुपा रहे हैं, उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको पाल रहे हैं ना फिर। और जितना आप उसको पालेंगे, आपके रिकवरी के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। एक तकलीफदेह ट्रीटमेंट और एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा, हर चीज़ से गुजरना पड़ा मुझे। मतलब सर्जरी भी हुई, कीमोथेरेपी भी हुई, रेडियोथेरेपी भी हुई, सर के बाल भी सारे उड़ गए, भवें पलकें, नाखून, मतलब ज़ाहिर है कीमोथेरेपी जो है वो एक बहुत तकलीफदेह प्रोसेस है, हर चीज़ से गुजरना पड़ा। लेकिन बात वही है कि चांसेस ज़्यादा थे क्योंकि अर्ली डिटेक्शन थी।
जब आपको पता लगा, और हस्बैंड से तो वाइफ शेयर कर लेती है अपनी घर की बातचीत, बट क्या आपने जिस चीज़ से आप गुजर रही थी, आपने अपने बच्चों को उस चीज़ का हिस्सा बनाया, उनको?
बिल्कुल बनाया मैंने अपने बच्चों को उस चीज़ का हिस्सा। और मेरे बच्चे, मतलब बहुत बड़ी सपोर्ट थे मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट मेरे बच्चे थे। और ये ऐसा वक्त होता है कि आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे वक्त में जो है ना, आपको लोगों का भी बहुत पता लगता है, बहुत सारे रिश्ते आपके बहुत करीब आ जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते वहीं होते हैं जहाँ पहले होते हैं, और कुछ आपसे दूर भी हो जाते हैं। काफ़ी इमोशनल सी बात है ये। कुछ रिश्ते, कुछ दोस्त ऐसे थे कि जो वाकई दिल के बहुत ज़्यादा करीब आ गए। खामोशी से उन्होंने जिस तरह मेरा साथ दिया है, बस दुआएं हैं उन सब के लिए, बहुत दुआएं हैं।
बेशक। और कहते हैं कि जब भी इंसान किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो तो उसका जो नेटवर्क होता है सपोर्ट का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बगैर वक्त गुजारना और मुश्किल वक्त गुजारना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको एक बड़ा अच्छा सपोर्ट नेटवर्क मिला हुआ था यहाँ पे, जिसकी वजह से आपकी मुश्किल थोड़ी सी आसान हुई। मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की या किसी और किस्म के कैंसर की?
नहीं, मेरी फैमिली में ना ब्रेस्ट कैंसर की कोई हिस्ट्री है, ना किसी और किस्म के कैंसर की कोई हिस्ट्री है। और ये चीज़ जो है ना, अब जो है नई स्टडीज़ के हिसाब से बहुत इररेलेवेंट भी हो गई है। पहले ज़माने में ये होता था कि आपको ये होता था कि हिस्ट्री हो तो मतलब इट रियली मैटर्स, लेकिन अब इतना ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई है और इतनी कॉमन हो गई है कि फैमिली हिस्ट्री होना एक बहुत छोटी सी परसेंटेज है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री हो। ठीक है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं, ज़्यादा ध्यान करें, ज़्यादा ख्याल करें। लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो भी आपको उतना ही ख्याल मेरे ख्याल में करना चाहिए। क्योंकि देखो, कैंसर को ये कहना कि जी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, नहीं, हम प्रिवेंट नहीं कर सकते कैंसर को। होना होगा तो होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उसके चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं हेल्थी लाइफस्टाइल के साथ और ध्यान करने के साथ, कि आप अच्छा खाएं पिएं, एक्सरसाइज। उफ, एक्सरसाइज इज सो इम्पॉर्टेंट, मैं बता नहीं सकती एक्सरसाइज कितनी इम्पॉर्टेंट है। सीरियसली, इट रियली हेल्प्स, इट रियली हेल्प्स। और अच्छे, आपकी अच्छी ग़िज़ा हो, आप पॉजिटिव सोचें, आप अच्छा सोचें, और लेकिन ये कि आप बिल्कुल ही बेबहरा ना हो जाएं, आप बिल्कुल ये इस चीज़ को दिमाग से ना निकालें। क्योंकि देखो, ज़िंदगी है, इसमें मुश्किलें भी हैं, आसानियां भी हैं, हर तरह के टेस्ट हैं। तो सेहत की तरफ से भी टेस्ट आपको मिल सकता है ना, तो इसलिए उसका ध्यान करें। और अगर आपको कोई चीज़ भी नॉर्मल से ज़रा सी भी हटी हुई महसूस हो तो प्लीज़ उसको फौरी तौर पर उसको एड्रेस करें और उसको देखें।
बहुत प्यारा मशवरा दिया कि एक्सरसाइज जो है बहुत 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 ज़रूरी है, ना सिर्फ कैंसर बट किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, क्योंकि ये आपके जिस्म को तवनाई देती है। आखिर मुझे ये बताएं कि आपने मुझे थोड़ा सा बता तो दिया है ऑलरेडी कि आपका जो इलाज का सफ़र था वो कैसा था, कि आपकी सर्जरी एक महीने के अंदर अंदर ही होगी टेस्ट के बाद। मुझे ये बताएं कि आपके एक्सपीरियंस में ट्रीटमेंट हासिल करना कितना मुश्किल था, कितना आसान था, उस प्रोसेस से आप कैसे गुजरी, और क्या सर्विसेज, कोई गवर्नमेंट की तरफ से सर्विसेज मिली, प्राइवेटली सर्विसेज आपको ऑफर हुई, ट्रीटमेंट की तरफ आप कैसे गई?
यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जो नॉर्मली हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना कि जी जाएं वो तो कोई पूछता नहीं है, कोई देखता नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। इनको मालूम है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है ना। आपका अगर अर्जेंट मामला है तो वो अर्जेंट बेसिस पे देखा जाएगा। मेरे केस में मतलब मैं गई हूँ एक छोटे से लंप को लेके गई हूँ, मेरी जीपी ने फॉरन रेफर किया, ठीक है, फॉर अल्ट्रासाउंड एंड मेमोग्राम। मैं खुद गई, अगले दिन की अपॉइंटमेंट मैंने ली और मैंने खुद उसको पेमेंट भी उसकी खुद की और मैं वो करवा के आ गई।
बिल्कुल सही। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपने जीपी के पास गई, आपने रेफरल लिया, बट आप खुद प्रोएक्टिव थी।
हाँ,
कि आप अगले दिन गई और आपने टेस्ट करवाए।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए मतलब अपनी मदद आप सबसे पहले, कोई और नहीं करेगा आपके लिए कुछ भी।
बिल्कुल। तो आप मुझे बता रही थी आपके टेस्ट हुए, आपने टेस्ट करवाए,
टेस्ट हुए, फिर उसके बाद जीपी ने मुझे बुलाया और जीपी ने मुझे कहा कि ये रिपोर्ट सही नहीं लग रही है और तुम्हें स्पेशलिस्ट के, मैं अपॉइंटमेंट लेके देती हूँ। और जीपी ने ही मुझे स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट लेकर दी, जो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँगा, मैं अगले दिन की ही अपॉइंटमेंट मुझे मिल गई और मैं गई हूँ। और उन्होंने भी देख के यही बात करी कि ये दिस इज़ नॉट लुकिंग नाइस, आप बायोप्सी करवाएं। फ़ौरन बायोप्सी की भी अपॉइंटमेंट मिल गई, बायोप्सी करवाई और दो तरह की बायोप्सी हुई थी उन्होंने, मतलब दो मुख्तलिफ तरह की बायोप्सी की। एक हफ्ते बाद रिपोर्ट कंफर्म हो गई कि जी ये ग्रेड 3 है, कैंसर है और अब हमें आगे चलना है। उन्होंने मुझे यही कहा कि हम आपकी सर्जरी करेंगे पहले और फिर जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उसके हिसाब से अगला जो ट्रीटमेंट है वो उस तय किया जाएगा। और सिस्टम बहुत अच्छा है, आप स्पेशलिस्ट क्लिनिक में जाएंगे, वहाँ पे वो आपको उन्होंने चेक किया और उसके बाद फिर वो आपकी मदद करते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आपके घर के पास वाले हॉस्पिटल में आपका इलाज होगा। ये नहीं है कि अब आप कहीं शहर के दूसरे कोने में जाएं इलाज करवाने के लिए। आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है, आपको घर में किसी किस्म के काम की ज़रूरत है, आपको अपने बच्चों के लिए किसी हेल्प की ज़रूरत है, क्या आप इस हॉस्पिटल और इस ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट आपको अवेलेबल है या आपको उसकी ज़रूरत है, आपके घर की सफाई के लिए किसी को आपकी ज़रूरत है, मतलब हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास सपोर्टिव फैमिली मौजूद थी, माशाल्लाह मेरी यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे और मुझे इस किस्म की मदद की या इंटरप्रेटर की इस तरह से ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने बहुत बहुत हर हर लम्हे हर लेवल पे आपसे ये पूछते हैं कि आपको किस किस्म की मदद की ज़रूरत है। फिर उसके बाद कीमो हुई, वो भी मतलब एक ही जगह ट्रीटमेंट मेरा हुआ है और वहाँ पर कीमो हुई, कीमो के कई महीने कीमो चली, उसके बाद उन्होंने आपको थोड़ा टाइम देंगे आपको ज़रा सा रिकवर करने का कीमो से, उसके बाद रेडियोथेरेपी के सेशंस हुए और फिर हर लम्हे आपको साथ लेके चल रहे हैं, वो आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी मेंटल सपोर्ट के लिए यहाँ पे ग्रुप्स हैं कि आप लोगों से बात करें, नर्सेज हैं जो मतलब इवन आफ्टर आवर्स में आप अगर आपको कोई भी उलझन है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, आप उनको फ़ोन करें, वो आपको हेल्प करेंगी, वो आपको बताएंगी।
बिल्कुल आकिफा, ये बात आपकी ठीक है और काफ़ी हमारे सुनने वाले इस बात से इतफाक़ भी करेंगे कि जब उन्हें इमरजेंसी सर्विसेज हासिल करने की ज़रूरत पड़ी है तो उनका बहुत जल्दी इलाज भी हुआ है और बहुत जल्दी ख्याल भी रखा गया है ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ केयर सिस्टम में। अच्छा, मुझे आपने बताया कि सर्जरी हुई और उसके बाद ट्रेसेस रह गए,
ट्यूमर था ना वो क्लियर मार्जिन्स के साथ निकल गया था,
सही,
लेकिन लिम्फ नोड्स जो है ना उसमें ट्रेसेस थे। और तुम्हें पता है लिम्फ नोड्स जो है वो एक बॉडी में एक पूरा सिस्टम है जो हर जगह लिम्फ नोड्स आपकी पूरी बॉडी में होते हैं, तो इट्स ये जरा थोड़ा डेंजरस बात होती है अगर आपके लिम्फ नोड्स में ट्रेसेस हैं तो दे कैन ट्रेवल एनीवेयर।
बिल्कुल सही, तो आपके लिम्फ नोड्स में ट्रेसेस रह गए जिसकी वजह से आपको कीमो भी करना पड़ा और रेडियोथेरेपी भी आपने जैसे बताई
जी।
अच्छा, कीमो के बारे में लोगों के बहुत सारे ख्याल आते हैं, जिसके बारे में भी सुनते हैं जो कीमो से गुजरा है, कोई बहुत अच्छा और प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं होता उनका और ये बड़ा मुश्किल आई गेस मरला होगा आपके लिए भी, तो मुझे इस मरले के बारे में थोड़ा सा बताएं। जब आप कीमो से गुजर रही थी इसमें आपने किन मुश्किलात का सामना किया, आपके लिए पर्सनली क्या चीज़ें बहुत मुश्किल थी एक्सेप्ट करना अपनी बॉडी में चेंजेस, मुझे थोड़ा सा बताएं।
हाँ, कीमो यही कहूँगी कि हाँ सबसे ज़्यादा टफ पार्ट था कीमोथेरेपी, सबसे ज़्यादा टफ पार्ट था क्योंकि ज़ाहिर है देखो वो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आपके जिस्म में, तो और वो सिर्फ टारगेट नहीं होगा कि जी जो कैंसर सेल है सिर्फ उसी को जाके टारगेट हो जाए, वो हर जगह इफ़ेक्ट करता है, हर जगह इफ़ेक्ट करता है, उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और कीमो के वक्त बस मुझे ये था कि आई रियली वॉन्टेड माई ओन स्पेस, मुझे सबकी सपोर्ट थी लेकिन उस वक्त मुझे ये था कि इस वक्त मुझे अकेले छोड़ दो, जब मुझे किसी की ज़रूरत होगी मैं आपको बुला लूँगी लेकिन वरना मुझे अब कोई इस वक्त मुझे कोई तंग ना करे, ये वाला था। क्योंकि कीमो का भी ये होता है कि उसकी पूरी एक साइकिल होती है, तो आप जब कीमो करवाते हैं तो कुछ दिन आपके अच्छे होते हैं, कुछ दिन आपके बहुत बुरे होते हैं और हर कीमो के बाद आपकी ताकत और कम होती चली जाती है। पहली कीमो के बाद आपको फिर भी इतना फील नहीं होता, दूसरी के बाद आपको ज़्यादा फील होता है, तीसरी के बाद आपको बहुत ज़्यादा फील होता है, तो वो ज़ाहिर है फिर वो और वो फिर एक फ़िज़िकल भी आपको जो जिस ट्रॉमा से आप गुजर रहे होते हैं ज़ाहिर है उसमें कीमो के बाद ज़ाहिर है 14th डे ये था कि मेरे बाल मेरे हाथों में आ गए थे, मेरे बच्चों ने लिटरली काफ़ी हेल्प की मेरी, ज़ाहिर है ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है कि आपके बाल आपके ऐसे हाथों में आ रहे हैं, तो दोनों मेरे बच्चों ने फिर मेरा हेड शेव किया, कि चलें अम्मा बस अब बहुत अच्छी लग रही हैं आप, चलें आएँ हम आपका हेड शेव कर देते हैं। तो दोनों ने मेरा हेड शेव किया और देवर विद मी मुसलसल मेरे साथ ही थे। और ज़ाहिर है उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपके मुंह का जायका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, माउथ अल्सर्स आपके हो जाते हैं, आपके सारे नाखून आपके झड़ जाते हैं, सारे बाल, और ओवरऑल आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन आपको ये दवा देते हैं उसके लिए, आप उसके लिए दवा लें, आप साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने की कोशिश करें, हैंडल करें उसे, और गुज़र जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, सब वक्त गुज़र जाता है। बस हिम्मत की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, मैं कहूँगी आपके डाउन डेज़ होते हैं, ज़ाहिर है हम इंसान हैं, हम फरिश्ते तो नहीं हैं ना, तो हम दुखी भी होते हैं, हमें रोना भी आता है, लेकिन रोना आता है रो लें, गुस्सा आ रहा है गुस्सा कर लें, साइड इफ़ेक्ट्स में एक गुस्सा भी है, मैं गुस्सा भी करती थी, लेकिन ये कि सब वक्त गुजर जाता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मियाँ बहुत हिम्मत देते हैं, हिम्मत रखनी पड़ती है, हिम्मत रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप हिम्मत छोड़ देंगे ना तो फिर और मुश्किल ही हो जाएगा आपके लिए हर कुछ। तो कोशिश करें, हिम्मत रखने की कोशिश करें। एक महीना इन्होंने मुझे रिकवर करने के लिए दिया उससे, और फिर उसके बाद हम आगे चले।
बिल्कुल, और विल पावर जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, बहुत ज़रूरी है। और कीमो, जिससे भी मेरी आज तक बात हुई है, जो भी किसी भी किस्म के कैंसर से गुजरा है और उसे कीमो से गुजरना पड़ा है, तो उसने यही बताया कि ये सबसे मुश्किल मरहला था उनकी ट्रीटमेंट का।
जी।
तो आपने मुझे बताया है कि मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि आपने इस मुश्किल वक्त पे काबू कैसे पाया, बट आपने आई थिंक अपनी बातों में ही बता दिया कि अगर रोना आ रहा है तो रो लो, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कर लो,
बिल्कुल,
बट हिम्मत ना हारो। और वही विल पावर वाली बात जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि विल पावर आपकी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी रेडियोथेरेपी हुई कीमो के बाद, और मुझे बताएं कि इस पूरा जो प्रोसेस था, पूरा जो सिलसिला था, इसमें कितना टाइम लगा कि आप कम्प्लीटली कैंसर फ्री हो गई?
कैंसर फ्री तो आज भी नहीं है।
अच्छा, सही
चल रहा है, अभी भी चल रहा है ट्रीटमेंट मेरा, वो तो आपको मॉनिटर करेंगे। अभी लास्ट मंथ ही मेरी एक सर्जरी भी हुई है, वो भी रिलेटेड टू यही था। मतलब अगर कैंसर नहीं है तो कोई और बीमारी भी हो सकती है।
बिल्कुल।
तो आपको जो भी बीमारी है, आप ऐसे सोचें ना कि आपको जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, आपने उसका भी इलाज करवाना है, आपने इसका भी इलाज करवाना है।
बिल्कुल। और आपको देख के बिल्कुल नहीं मैं कह सकता कि आपका शायद कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होगा इस वक्त, क्योंकि माशाल्लाह आपके बाल भी आ गए हैं, आप चहक रही हैं और बातें कर रही हैं मुझसे, और पिछले हफ्ते जब मैं आपसे मिला था पिंक वॉक के इवेंट पे, वहाँ पे भी आपने अपनी स्टोरी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ सबसे शेयर की, तो कहीं से लगता नहीं है कि आप अभी भी गुजर रही हैं इस चीज़ से। आकिफा, आपने बड़ी पर्सनल स्टोरी हमारे साथ शेयर की है, तो आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, हमारी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड, कि हमारी ये जो कम्युनिटी है इसमें कैंसर और फिर ब्रेस्ट कैंसर ऑन टॉप, वैसे ही ना एक अभी भी एक ममनू टॉपिक है जिस पे लोग बात करना पसंद नहीं करते, और इस पे जब तक बात होगी नहीं, जब तक हम अपनी बेटियों को, बेटों को, फैमिलीज़ को नहीं बताएंगे कि इसके क्या असरात हैं और कितनी जानलेवा ये मर्ज हो सकता है, तो इसका इलाज भी नहीं होगा। तो मुख्तसर सा आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को, जो कहीं पे भी हमें सुन रही है, ऑस्ट्रेलिया में रह रही है, ओवरसीज़ रह रही है, आप क्या मैसेज देंगी कि अगर कोई बंदा इस चीज़ से गुज़र रहा है तो क्या करना चाहिए उन्हें और क्यों ज़रूरी है ये आपके ख्याल में?
देखिए, बात जो है ना, वो मैं अगर ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ कैंसर की बात नहीं है, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, किसी किस्म का कोई मसला हो, इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब ठीक है, कैंसर, आई नो कि कैंसर जो है वो लिटरली मेरे ट्रीटमेंट के टाइम पे भी और मेरे इर्द गिर्द भी कोई भी ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता था, कोई भी ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता था, बस मुसलसल जैसे इशारों के नायों में बात हो रही होती थी कि सामने वाला भी समझ ले कि क्या है क्या नहीं है, मतलब वाकई ऐसा टैबू जिसे कहते हैं। लेकिन ये कि चाहे कैंसर हो, और चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे कोई भी किस्म का कैंसर हो, आपको बिल्कुल किसी किस्म की भी कोई भी अगर एबनॉर्मल बात हो रही है या नॉर्मल रूटीन से हट के अगर आपको कुछ भी महसूस हो रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ख़वातीन जो हैं वो भी मतलब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और अपने देखो बात सिर्फ ये कि आपको अपने आइडिया होना चाहिए, अपनी बॉडी का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा जाहिर है जैसा माशरा है, जो हमारा सिलसिला है, हम लोग सिर्फ अपने बारे में खुद कॉन्शियस हो सकते हैं और हमें आइडिया हो सकता है। तो आप अपने अपने चाहे वो मतलब अपना आपको आप महसूस करें, आप अपने प्रॉपर टेस्ट्स करवाएं, चाहे वो पेप्समियर, वो भी बेहद इम्पॉर्टेंट टेस्ट है हमारे पास, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो या ये कि ये अपना ओवेरियन कैंसर है, सर्विकल कैंसर है, इस विजिलेंट होना पड़ेगा। जो टेस्ट हैं उनको प्रॉपर करवाना पड़ेगा, टाइमली करवाना पड़ेगा। टालने से जो है ना, वो आंखें बंद करने से या टालने से मसला गायब नहीं हो जाता। और बहुत सारे लोग हैं इर्द गिर्द मेरे, मैं देखती हूँ कि मतलब हम सबसे पहले अपने लिए ही जो है ना वो टालते हैं। हम अपने घर की चीज़ों को, अपने फैमिली की चीज़ों को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, हर चीज़ को हम देखेंगे, ख्याल करेंगे, लेकिन अपनी ज़ात को सबसे ज़्यादा हम इग्नोर करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि बात सारी यही है कि जब हम खुद सही होंगे तो हम बाकी हर काम भी सही कर सकते हैं। ये बात है सारी।
बहुत खूबसूरत बात की आपने एंड में, कि जब हम खुद सही होंगे तो हम बाकी सारे काम भी सही कर सकते हैं।
हमारे पास ये जो है ना कि अगर ये खा लो और ये कर लो तो सारा कैंसर गायब हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, नहीं। अपनी आंखें खुली रखें, ध्यान करें, ठीक है, आपके दिल को अगर तसल्ली हो रही है तो आप ज़रूर ये सब कर लें, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूर करना है, उसको इग्नोर नहीं करना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कैंसर जो है ना बहुत फैलने वाली चीज़ है, और बाय द टाइम आप इधर उधर के इलाज करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि अब हम ट्रीटमेंट करें तो कहीं देर नहीं हो जाए।
बिल्कुल आपकी बात सही है कि कैंसर जो है, और जैसे आपके केस में अग्रेसिव था, और बहुत सारे केसेस में अग्रेसिव होता है, कि आप साथ साथ अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट भी जारी रखें, उसको इग्नोर ना करें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही एक नोन तरीका है अभी तक इलाज का। आकिफा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ना सिर्फ कीमती वक्त निकाला बट बहुत सारी कीमती बातें हमारे सुनने वालों को बताई, और हमारे साथ एक बहुत पर्सनल स्टोरी भी शेयर की अपनी। आकिफा के अभी भी फॉलोअप ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, वो इलाज मुकम्मल होने पर कम्युनिटी में रजा कराना काम करने का इरादा रखती हैं। उम्मीद करते हैं आकिफा की कहानी सुनकर आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा।
मजीद फीचर सुनने के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए।